तो आज के पाठ जो हम शुरू करेंगे वो इसराइल के बारे में हम भविष्यवाणी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्रार्थना में ब्रदर हुसैन हमको प्रार्थना में चलेगा।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सच्चे पिता परमेश्वर, सुवेत्र पिता परमेश्वर, आप जो उज्ज्वल उजाले में रहते हो पिता परमेश्वर, आप जो ज्ञान प्रेम शक्ति न्याय रखने वाले परमेश्वर, सच्चे पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके इकलौते बेटे हमारे मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके दया कृपा के संगठन के सामने आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सच्चे पिता परमेश्वर, सबसे पहले धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपने, और धन्यवाद करते हैं इसमें मौके के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर आपके पास को अटेंड करने के लिए। पिता परमेश्वर बेनती करते हैं पिता परमेश्वर, भाई बहन और पिता परमेश्वर के दिलों को आप अपने दूसरे वचन के लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, आत्मा की शक्ति दीजिए ताकि हम इस वचन को अच्छी तरह समझ सके पिता परमेश्वर, इसको अच्छी तरह सुन सके पिता परमेश्वर, इसको याद रख सके पिता परमेश्वर, और इसके द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में फल ला सके पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आने वाला सारा समय आपके हाथ में सौंपते हैं, मांगते हैं आपके द्वार से बेटे हमारे मुक्ति दाता पति यीशु मसीह के द्वारा।
तो प्रभु यीशु के बुलाए हुए प्यारे भाई और बहनों, अभी हम 50वां पाठ में पहुंच गया है। 49 के विषय लेने के बाद अभी 50वां विषय में हम पहुंच गया है, और ये 50वां विषय का नाम है, जैसा हमने आपको बताया, इसराइल देश के बारे में अभी हम ध्यान करेंगे, और इसराइल देश के लिए परमेश्वर क्या भविष्यवाणी रखा है, अंग्रेजी में इज़राइल इन प्रोफेसी। अभी एक भविष्यवाणी हम पढ़ाई करेंगे जो एहेजकेल की किताब में है, और ये भविष्यवाणी तो बिल्कुल इज़राइल देश के बारे में परमेश्वर बताता है। इस भविष्यवाणी में हम देख लेंगे कि प्रभु और परमेश्वर ने इज़राइल देश के लिए क्या योजना रखा है। पहला तो इसराइल देश को अभी सुसमाचार युग की स्थिति में क्या स्थिति में है, और उसके बाद इन इब्राहिम के बच्चों के लिए परमेश्वर क्या योजना रखा है आने वाले दिनों में, मतलब सुसमाचार युग के बाद परमेश्वर क्या योजना रखा है इसराइल देश के लिए, ये बात तो आज ये भविष्यवाणी में हम समझ लेंगे। ये भविष्यवाणी तो हम पढ़ लेंगे एहेजकेल की किताब में 37वां अध्याय और 10 वचन है, पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक। एहेजकेल की किताब 37वां अध्याय वचन 1 से लेकर 10वां वचन। दक्षिण भारत में जहाँ सारा आपके आपके भाई और बहन हैं और सारे भक्तों हैं, सभी अपने प्यार और अपने प्रेम और मसीह के अंदर मोहब्बत आप सभी को, आप दोनों के लिए भेजा है, क्योंकि हम बताते हैं आपके बारे में, आपके बपतिस्मा के तस्वीरों दिखाया, बहुत खुशी एहसास किया और आनंदित स्थिति में अभी के प्रेम आपके पास भेज दिया है। एहेजकेल की किताब 37वां अध्याय वचन 1 से लेकर 10वां वचन तक।
पिता परमेश्वर शक्ति मत पर दे, और वह मुझ पर अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की शहर पर दूसरी हड्डियाँ थी और सूखी थी, तब उसने मुझसे पूछा क्या मनुष्य के संतान क्या ये हड्डियाँ जी सकती है, मैंने कहा हे परमेश्वर पिता तू भी जानता है, तब मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह रहे हैं हड्डियों की तब मुझे वचन सुनो, परमेश्वर पिता तुम हड्डियों को क्यों कहता है, देखो मैं आप तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जीव होगे, मैं तुम्हारी नखे उठाऊंगा और मांस डाऊंगा और तुम को चमड़े से ढाकूंगा और तुम मैं सांस समाऊंगा और तुम जी रहोगे और तुम जान लोगे कि मैं पिता परमेश्वर हूँ। आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आठ हुई और बुलडोर हुआ और वह हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, मैं देखता रहा उनमें से नजर बंद हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढक हुई परंतु उनमें सांस कुछ न थे, तब उसने मुझसे कहा मनुष्य के संतान सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह परमेश्वर पितायु कहता है, चार दिशाओं से आकर इन भारतीय हुए में समा जा कि ये जीव है। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, सब चार उनमें आ गई और वे जीव कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई।
देखो ये बहुत ही आश्चर्य का एक भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी में शुरुआत में दृश्य क्या है, एक बहुत बड़ा तराई और इस तराई के बीच में बहुत सारे हड्डियां और सूखे हुए हड्डियां, मतलब बहुत समय से पहले हुए और रहने वाले हड्डियां हैं वो हम देखते हैं। तो ये सूखे हुए हड्डियां तराई में, जो ये सूखे हुए हड्डी, इसका मतलब क्या है? इसका 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 कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये दृश्य जो है ये एक भविष्यवाणी है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगले वचन 11वां वचन में परमेश्वर ही बताता है कि ये सारा दृश्य और ये जो भविष्यवाणी, इसका मतलब क्या है। देखो ये इसराइल के सारे घराने के लोगों हैं, तो ये हड्डियां एक चिन्ह है सारे इसराइल लोगों के लिए। सारे इसराइल लोगों इस हड्डियों का दृश्य में हम दिखता है, हम देखते हैं। तो इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हुए हम बहुत सारे बात हम समझ लेंगे कि परमेश्वर इसराइल देश के लिए क्या योजना रखा है, क्या योजना बना है। तो ये बात समझना है, लेकिन इससे पहले हम ये बात को देखना है कि ये जो दृश्य और ये जो भविष्यवाणी जो परमेश्वर एहेजकेल को दिया, ये कब दिया? ये परमेश्वर उस वक्त दिया जब इसराइल देश जेदकिया आखिरी राजा गिरने के बाद सारे इसराइल देश बाबुल के अंदर लेके गया। 70 साल वहां बाबुल के अंदर था। तो इस 70 साल के समय में, उसके बीच में परमेश्वर ने ये दृश्य एहेजकेल को दिखाया। तो ये उस वक्त था, वो 70 साल लंबा समय, सोच लो 70 साल का उम्र भी हमारा नहीं होता है। तो 70 साल के समय में, उसके बीच में जब ये लोग बाबुल में थे, बाबुल में कैद के स्थिति में थे, ये लोगों को दिल बहुत ही दुख हो गया था। ये लोगों को सोच रहा था कि अभी हमारा क्या उम्मीद है, क्या हम यहाँ से छुटकारा होंगे, क्या यहाँ से रहा हो जाएगा। तो ये सारे बात तो हम देखते हैं एक भजन संहिता 137वां भजन संहिता और पहला वचन, 137वां भजन संहिता और पहला वचन। इस वचन में हम देखते हैं कि ये लोगों बाबुल के अंदर जब थे और जब दुखी मन में थे, उस वक्त ये भजन संहिता के वचन लिखा गया था। देखो लोक में बैठे थे और रोने पड़ा करके हम देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त 70 साल के कैद होने की स्थिति में बहुत सारा दुख और बहुत सारा गम था। उस स्थिति में और उस वातावरण में परमेश्वर ने ये दृश्य और ये भविष्यवाणी एहेजकेल को दिया। क्या ये भविष्यवाणी उस वक्त का स्थिति के लिए दिया? क्या उस वक्त के लिए परमेश्वर ये भविष्यवाणी दिया? नहीं, एक्चुअली वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर उस वक्त दिया वो अभी तक पूरा सही नहीं हुआ अभी तक, मतलब इसको फुलफिल होने के लिए अभी भी समय बाकी है अच्छा होने के लिए। तो ये जो भविष्यवाणी हमको समझना है, पहला तो हम देखता है ये भविष्यवाणी कौन से समय में ईश्वर ने दिया है, और उस समय में हम देखा है कि वो जो लोग जब वो बाबुल में थे और बाबुल के कैद होने की स्थिति में जब थे, उस वक्त उस गम में और इस उस पीड़ा में इन लोगों को परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी दिया एचकेएल को, और एचकेएल को ये देते हुए हम समझना है कि उस भविष्यवाणी उस वक्त देने का क्या कारण था। अगर वो भविष्यवाणी उस समय तो प्रकट नहीं होने वाला था तो क्यों परमेश्वर उस वक्त दिया ये भविष्यवाणी? कुछ न कुछ मतलब होना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर ऐसा तो भविष्यवाणी दिखाने वाला नहीं था। तो ये बात अभी हम समझ लेंगे। उससे पहले हम एहेजकेल को 37वां अध्याय पहला और दूसरा वचन थोड़ा हम समझ लेंगे। एहेजकेल 37वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। तो ये पहला वचन बताता है कि ये एक स्थिति है, एक तराई के बीच में हम देखता है कि पूरे हड्डियां है और हड्डियां तो सूखे हुए हैं, मतलब बहुत लंबे समय वो हड्डियां उस तराई में पड़े हुए हैं। तो इसका स्थिति जरा सोच लो, आप कल्पना करके देख लो कैसा कैसा स्थिति है। बहुत ही दुखी मन स्थिति है देखने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देखते हैं कि परमेश्वर सवाल पूछते हैं कि मनुष्य का पुत्र, क्या आप बता सकते हैं कि ये हड्डियां जीवित हो सकता है? तो एहेजकेल बोलता है, हे पिता परमेश्वर, ये सिर्फ आपको जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो ये सवाल जो परमेश्वर पूछा, ये एक आशा का सवाल है। ये मरे हुए स्थिति, ये सूखे हुए स्थिति, इनमें से जान ला सकता है, इनमें से कोई जीवित हो सकता है, यही सवाल पूछा है। तो जैसा आपको जानता है कि ये हड्डियां एक चिंता इसराइल के स्थिति के लिए, और एहेजकेल के पास जब परमेश्वर ने सवाल पूछा, एहेजकेल तो बहुत ही नर्मदा से और बहुत ज्ञान के साथ में जवाब बता, परमेश्वर ये सवाल का जवाब मेरा पास नहीं है, जो जैसा सवाल आप पूछते हैं इसका जवाब तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं, इतना बड़ा ज्ञान हमारे पास तो नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है हमारे लिए। बहुत सारे सवालों का जवाब जब हमारे पास नहीं रहता, हम कहना है कि हमारे पास नहीं जानता है, ये बात हमारे पास नहीं है, हम कोई कल्पना से बात नहीं करना है। हम जब हमारे पास ज्ञान नहीं रहता उस वक्त हम ज्ञानी दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे ही हमारे मुंह खोल के ऐसा वैसा बात करना बराबर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के किताब में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कुछ बताता है। मत्ती 5 और 37 देखो, हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं, मतलब जो जब बात जानते हैं हाँ बताओ, जब नहीं जानते नहीं बोल, लेकिन जब नहीं जानते फिर भी हाँ बोलते हैं वो बुरा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक जो हम याद में रखना है। और अभी हम देखते हैं कि इस बात के बारे में एक और वचन, जकरिया 4:5, जकरिया 4:5।
जकरिया 4:5
जो जो दूध मुझसे बातें करता था उसने मुझे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा कि प्रभु मेरे प्रभु मैं नहीं जानता।
देखो इतना बड़ा जकरिया भविष्यता, हम नहीं जानता कहने के लिए शर्म नहीं लगा, हम नहीं जानता बस। सच्चाई में हमेशा रहना चाहिए, अगर ज्ञान है बताता हूँ, नहीं है तो वो भी बताता हूँ। तो ये देखो बहुत बड़े बड़े भविष्यताओं हेजकेल और जकरिया के उदाहरण में हम देखते हैं कि दोनों को शर्म नहीं आया बताने के लिए कि हम नहीं जानते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सबक है हमारे लिए, क्योंकि हेजकेल भी सवाल पूछते हुए प्रभु की ओर देख के सवाल का जवाब देख ढूंढता है। तो अभी हम इसका जवाब देख लेंगे, परमेश्वर ही इसका जवाब बताता है। क्योंकि सवाल क्या था कि इन हड्डियों, इन सूखे हुए हड्डियों, क्या ये जीवित हो सकते हैं? तो अभी परमेश्वर ही जवाब देता है, 4 से लेकर 7 वचन तक, एचकेल 33 4 से लेकर 7 वचन तक।
परमेश्वर पिता तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, और मैं तुम्हारी नसें जाऊंगा मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं पिता परमेश्वर।
तो यहाँ जवाब देते हुए परमेश्वर बताता है चिन्ह के जरिए से इस भविष्यवाणी में कैसा उन सूखी हड्डियां जीवन पर वापस लौट आएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये एक कदम के बाद बताता है। और उसके बाद याद में रखना है कि ये 11वां वचन में हमने पढ़ा है ना कि ये सारा हड्डियां का मतलब क्या है, सारे इसराइल के घराने। तो सारे इसराइल के घराने मतलब सारे इसराइल कहते वक्त इसका मतलब है 12 झुंड। अब इसराइल के बारे में हम जानता है ना, सुलेमान राजा के बाद बंटवारा हुआ, 2 झुंड बन गया यहूदिया मतलब यूदा और 10 झुंड रह गया इसराइल। तो ये सारे 12 झुंडों के बारे में ये भविष्यवाणी दिया गया है। तो सारे इसराइल के घराने का ये है कि सारे 12 झुंडों के बारे में ये भविष्यवाणी है और ये 2 देशों के बारे में ये भविष्यवाणी है, एक यूदा और एक इसराइल। अभी अगले सवाल ये पैदा होता है कि ये जो भविष्यवाणी जो यहाँ परमेश्वर देता है दे रहा है, ये कौन से समय में होने वाला है, मतलब इसके इतिहास में ये भविष्यवाणी कब होगा, कौन से समय में होगा। तो ये बात तो वाकई तो हम देख चुका है कि ये परमेश्वर ये भविष्यवाणी दिया जब ये लोग 70 साल के कैद में बाबुल के अंदर था। तो इस 70 साल के कैद की स्थिति में हम देखा कि कोरेश राजा का पहला साल में इन लोगों का रिहा हुआ। कोरेश राजा का पहला साल मतलब पहला राज्य का साल मतलब दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 22 और 23वां वचन, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 22 और 23वां वचन, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 22 और 23। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय वचन 22 और 23।
फारस के राजा खुशरू के पहले वर्ष तक मौके ने उसके मन को भाड़ा कि जो बच्चा इंडिया के मुँह से निकला था वह पूरा हो, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये आगवाया और उस आशय की चिट्ठियाँ लिखवाई। फारस का राजा खुशरू कहता है स्वर्ग के परमेश्वर पिता ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि युवा मेरे योद्धा में है, उसने मेरा एक भवन बनवा है, इसलिए है उसकी प्रजा सब लोगों तुम में से जो कोई चाहे परमेश्वर पिता उसके साथ रहे वह वहाँ रवाना हो गए।
तो ये राजा का नाम क्या है?
फारस मतलब खुसरू
फारस मतलब पर्शिया और खुसरू का मतलब है साइरस। तो ये खुसरू राजा के राज्य का पहला साल, उस पहला साल में खुसरू राजा ये हुकूमत देता है कि हुक्म देता है कि इसराइल वालों जो इतने साल बाबुल के अंदर कैद की स्थिति में थे, अभी उसको पूरा स्वतंत्रता है कि अगर उसके मर्जी हो तो वो छोड़ के अपने घर को वापस जा सकते हैं, अपने इसराइल के देश को वापस जा सकते हैं। तो ये बात तो हम यहाँ पढ़ते हैं ये वचन में, दूसरा इतिहास में 36वां अध्याय 22 और 23 ये साफ साफ बताता है वो समय जब ये हुकुम खुसरू राजा के जरिए से प्रकट हुआ और ये लोगों का 70 साल का कैद का स्थिति खत्म हुआ। तो ये है ये वचन का मतलब पूरा होना, क्या ये है ये भविष्यवाणी का पूरा होना? नहीं, ये सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि हमको याद में रखना है कि परमेश्वर ये भविष्यवाणी दिया था इसराइल को एहेजकेल के द्वारा, जब ये लोग 70 साल के कैद गुजर रहे थे बाबुल के अंदर, उस वक्त परमेश्वर ने ये वचन और ये भविष्यवाणी और ये दर्शन एहेजकेल को दिया। एहेजकेल को देते वक्त इसके कारण क्या था कि उस वक्त जो इसराइल को पा रहा था वो अनुभव सिर्फ एक चिन्ह बन जाएगा, वो सिर्फ एक चिन्ह था कि इसराइल जो कैद गया मतलब कैद के स्थिति में गया, वो स्थिति उस वक्त का नहीं, मतलब जो 70 साल का कैद का अनुभव पा रहा था वो तो सिर्फ एक चिन्ह है, लेकिन इसराइल प्रभु यीशु के बाद एक लंबा समय कैद की स्थिति में जाएंगे। तो ये बात तो यहाँ चिन्ह के द्वारा दिया गया है और इसराइल के वो आने वाले अनुभव मतलब 70 के बाद, 70 मसीह के बाद, वर्ष 70 मसीह के बाद 70 एडी में जब इसराइल देश के ऊपर हमला हो जाएगा, जब रोम के सेना और रोम के सेनापति जब इसराइल जब जेरूशलम ऊपर हमला करेगा और जब पराजित हो जाएगा और जब सारा का सारा इसराइल देश का नाश हो जाता है और जब सारे के लोग सारे दुनिया में बिखर जाएगा, उस समय के बारे में परमेश्वर यहाँ इस भविष्यवाणी में बता रहा है, उस समय आ जाएगा करके परमेश्वर बता रहा है इस भविष्यवाणी में। लेकिन ये जो बाबुल में और मिले हुए जो जो अनुभव जो मिल रहा था वो तो सिर्फ एक उदाहरण, ये तो सिर्फ एक चिन्ह था, क्योंकि हम याद में रखना है कि वो जो आने वाला जो नाश जो इसराइल के ऊपर आने वाला था उसके वो तो बहुत ही भयानक होने वाला था। उसके बारे में हम दानियल 9वां अध्याय 26वां वचन में पढ़ते हैं। दानियल 9:26। दानियल 9:26। दानियल 9:26 वचन।
उन बादशाह के प्राव के दिल में प्रतिष्ठित कुछ काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले पर प्रजा नगर और कोई स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है।
तो इस ये है वो भविष्यवाणी जो साफ साफ बताता है कि यरूशलेम मतलब यरूशलेम का नगर और वो क्या बोलता है नगर और जो हिंदी में कहता है अंग्रेजी में कहता है सैंक्चुअरी टेंपल क्या दिया तो? मंदिर मंदिर नहीं उधर क्या दिया है नगर और पवित्र स्थान। नगर का मतलब है जेरूशलेम और पवित्र स्थान है वो मंदिर। तो सुलेमान के बने हुए मंदिर और हम देखते हैं जेरूशलेम के ऊपर हमला होगा और हमला होते हुए बहुत सारा झगड़ा होगा और उस झगड़ा में परमेश्वर के वचन के अनुसार इज़राइल के बहुत बड़ा पराजित होगा, इज़राइल देश सर्वनाश हो जाएगा। और उस सब कब क्यों हुआ? क्यों अपने अपने मसीह को इनकार कर दिया, अपने मसीह जब आया इन लोगों ने कबूल नहीं किया, मसीह को इनकार कर दिया, मसीह को इनकार कर दिया मसीह को इनकार कर दिया और ऐसा स्थिति उनके ऊपर आया। आज भी होगा जब प्रभु यीशु के क्रूस चढ़ाने से पहले वो स्थिति हुआ जब पिलात ने लोगों को पूछा कि मैं क्या करूं प्रभु के लिए, मैं क्या करूं, क्या उनको चुड़वाऊं? क्या बोला? नहीं 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 नहीं, उसको मत चुड़ाओ। और उसके बाद अपने हाथों को पानी में धोते हैं, सब लोगों के सामने बोलता है इनका मेरे ऊपर नहीं है। तो ये बोलता है, लोग बोलता है नहीं 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 ये छोड़ दो, लहू हमारे ऊपर हमारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर होने दो। तो ऐसे ही हुआ और उसके ऊपर वो शाप आया और उसी शाप के अनुसार हम देखते हैं कि इसराइल के ऊपर ये 70 में मतलब प्रभु के बाद 70 AD में और उसके ऊपर ये नाश आया और उसके बाद लोग सारे में बिकर बिकर हो गया। ये बात तो हम जकरिया में 7:14 में पढ़ते हैं, जकरिया 7:14। तो तितर बितर कर दिया परमेश्वर, ऐसे ही हम देखिए बहुत सारे यहूदियों दुनिया के हर एक देश के अंदर चला गया। मुंबई में है यहूदियों, बहुत सारे भारत के शहरों में यहूदियों हैं जो इस 70 साल के बाद तितर बितर परमेश्वर ने कर दिया, हमने वचन में पढ़ते हैं। तो ये जो होने वाला था 70 के साल में 70 AD में, ये तो पहले ही परमेश्वर ने एक तस्वीर के रूप में, एक चिन्ह के रूप में बाबुल के कैद के स्थिति में दिखाया। बाबुल का मतलब आपको जानते हैं ना, बाबुल दुनिया का सबसे पहला साम्राज्य था, सारे दुनिया का राज्य। तो तभी बाबुल एक चिन्ह बना दुनिया के लिए। जब ये इसराइल के लोग सारा दुनिया में तितर बितर परमेश्वर ने लेके उनको डाला, कर दिया, तो ये इसका मतलब है कि बाबुल में जब ये दृश्य दिखाया और बाबुल में जब ये लोग थे, वो एक चिन्ह था कि 70 के बाद वो सारा दुनिया में हो जाएंगे कैद की स्थिति। तो ये कैद का स्थिति हुआ चिन्ह के द्वारा उस वक्त 606 मसीह के पहले, जब वो बाबुल में 70 साल थे, वो एक चिन्ह था। लेकिन उस बाद ये लोग सारा दुनिया में तितर बितर परमेश्वर करा देंगे। तो ये बात तो ये एक चिन्ह के द्वारा में यहाँ दिया गया है। और जैसे वहाँ 70 साल के नियमित सालों के हिसाब में उधर कैद की स्थिति में गया, उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये लोग, जब ये लोग वचन में पढ़ेंगे, ये नियमित स्थिति, दूसरा इतिहास 36:21, दूसरा इतिहास 36:21, दूसरा इतिहास 36:21। तो 70 साल का समय यरेमिया के मुंह के जरिए से परमेश्वर ने बताया कि ये इसराइल लोग ऐसे कैद की स्थिति में थे होंगे। उसी तरीके से मसीह के बाद, प्रभु के बाद, जब उनके ऊपर ये शाप आया, जब वो सारा दुनिया में तितर बितर परमेश्वर ने करा दिया, वो समय भी एक फिक्स समय था। फिक्स का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, नियमित, क्या नियमित, नियत समय, एक नियत समय जो परमेश्वर ने बताया जकरिया के किताब में 9:12, जकरिया 9:12। जकरिया 9:11,
तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लोगों के बारे में मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबाल लिया है।
9:11 जकरिया 9:11, सॉरी माफ कीजिएगा, 9:12।
हे आशा डरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुम को बदले में दुगना को दूंगा।
दुगना, तो ये दुगना यहाँ दिया गया है, डबल। ये दुगना परमेश्वर एक नियत समय रखा इसराइल के ऊपर जो सजा देने वाला था। यिर्मयाह 16:18 18वां वचन में दोबारा बताता है कि ये दुगना है। यिर्मयाह 16:18
क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपने घृणित उत्सव के लोगों से उचित किया और मेरे ने शराब को अपने शिक्षक से भर दिया।
नहीं तो पूरा पढ़ो 16:18
क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित उत्सव को लोगों से अचुत किया और मेरे ने जो भाव को अपने शिक्षक से भर दिया है।
और
नहीं
नहीं सारा शायद हिंदी में 17 में आया ये बात 17 में पढ़ो।
क्योंकि उनका पूरा आचरण मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वे मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है और ना उनका धर्म मेरी आंखों से दूर है, इसलिए मैं उनका धर्म और पाप का दोगुना दंड दूंगा।
हाँ दो गुना दंड, ये 18 में नहीं है ना, सर में है तो अंग्रेजी में 18 में है, हिंदी में 17 में आ गया है। दो गुना दुगना दंड, सो ये दुगना दंड इधर दिया गया है। दो गुना दुगना दंड का मतलब क्या है, ये दुगना दंड को हम समझना है। जैसे जैसे समय परमेश्वर इनको आशीर्वाद दिया, मतलब परमेश्वर ने उनको बहुत सारे आशीष दिया, उसी हिसाब के समय में परमेश्वर उनको छोड़ दिया, इसका मतलब है दुगना दो गुना। तो इसको कैसे हम हिसाब लेना है, हम इसका हिसाब लेना है याकूब के मौत से लेकर प्रभु यीशु मसीह वो के मौत के वर्ष तक, क्योंकि प्रभु यीशु के मौत के वर्ष में प्रभु यीशु मसीह इसराइल के बारे में एक न्यायित बात बताता है, जो हम पढ़ते हैं मत्ती के किताब 23:38 मत्ती के किताब 23:38 मत्ती के किताब 23:38 देखो तुम्हारे घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ दिया गया है। तो ये न्यायिक बातों प्रभु ने बताया इसराइल के बारे में, और ये हुआ उनके मौत से थोड़े दिन पहले। ये वर्ष था 33 प्रभु के बाद, तो ये साल 33 में न्यायिक बातें को बताता है, और ये उस वक्त के आशीष का समय खत्म हुआ। कब से शुरू हुआ, याकूब के मौत से। याकूब का मौत कब हुआ, 1812 मसीह से पहले, 1812 मसीह से पहले और 33 मसीह के बाद तक। तो 1812 मसीह से पहले से लेकर 33 मसीह के बाद तक ये हिसाब हम देखते हैं। ये इतने सालों इसराइल के ऊपर परमेश्वर का किश था, ये इसराइल के अच्छे समय थे। लगभग कुल मिला के ये कितने साल था, 1812 मसीह से पहले और 33 मसीह के बाद, दोनों को मिलते हुए आता है 1845 साल। तो 1845 साल लोगों का आशीष का समय था, और जब प्रभु ने ये शब्दों को बताया कि आपके आपके लिए अभी उजाड़ छोड़ दिया गया है, वहां से शुरू हुआ उनके उजड़े हुए स्थिति, उनके उजड़े हुए स्थिति, उनके बिना आशीष का स्थिति, आप कह सकते हैं उनके श्राप का स्थिति, श्रापित स्थिति हम कह सकते हैं। तो उधर साल 33 मसीह के बाद से शुरू हुआ वो स्थिति, और वो कितने साल तक जाएगा, हमने अभी अभी वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा हम उनको दो गुना दुगना दंड देंगे। दुगना दंड का मतलब क्या है, जितने समय हमने उनको आशीष दिया उतना ही समय हम उनको श्राप देंगे, मतलब उनको आशीष नहीं देंगे, हम उनसे दूर चले जाएंगे। तो ये बात तो अभी जान गया है, ये 1845 साल, सो साल 33 मसीह के बाद से 1845 अगर हम जुड़े जाए आ जाता है 1878 मसीह के बाद, 1878 मसीह के बाद में इसराइल के दंडित समय खत्म हुआ 1878, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उनको दंड मिलेगा दुगना, दो गुना। इसका मतलब जितना साल उनको आशीष था याकूब के मौत से लेकर प्रभु यीशु के वो शब्दों को बोले तक, मतलब 1812 मसीह से पहले से लेकर 33 मसीह के बाद तक 1845 साल के समय प्रभु का आशीष इसराइल के ऊपर था, वहां वहां 33 के साल में शुरू हुआ दंडित समय, जुटते हुए आशीष के समय, दंडित समय वहां शुरू हुआ उजड़े हुए समय, और वो उजड़े हुए स्थिति चलेगा दुगना, दुगना का मतलब है 1845 साल। तो वो खत्म होने वाला है अगर हम हिसाब देखे जाए तो 1878, क्योंकि 1845 अगर आप 33 को जुड़ता है आता है 1878
जी। 1845 आपने बोला ना कि उनका आशीष का समय था 1845 साल टोटल, तो परमेश्वर उनको बोला कि मैं दुगना श्राप दूंगा ना।
हमारा दुगना का मतलब क्या है, दो, अगर हम किसी से एक मार मिलता है हम दो दे जाए तो न्याय नहीं है,
डबल ना,
डबल 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 का मतलब ये हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए डबल क्या है कि जितना साल मैं उनको आशीष उसी हिसाब के साल उसको दंड देंगे। ऐसा नहीं कि उस जितना साल मैंने दिया उसको दुगना मतलब डबल, वो परमेश्वर नहीं करता, वो अन्याय है। आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, हाथ के लिए हाथ, है ना, वो ही है परमेश्वर का न्याय, है ना। तो उस हिसाब से जितने साल उनको आशीर्वाद दिया, दुगना का मतलब क्या है, ऐसा ये है दुगना, इतना था आशीष उसी हिसाब के समय होगा उसको दंड, उसका होगा ये उजड़े हुए स्थिति। तो इसका मतलब है परमेश्वर का दुगना, लेकिन हमारे लिए दुगना का मतलब ऐसा नहीं, हमारा दुगना क्या है, एक दिया तो हम दो देंगे, ये न्याय नहीं है परमेश्वर के नजर में। तो दुगना का मतलब अभी समझ लिया, ये है दुगना मतलब है 1878 में खत्म होना है ये इसराइल के ऊपर ये दंड। और जैसे जैसे वो 70 साल खत्म हुआ ना बाबुल में, और 606 मसीह से पहले वो लोगों को कुसरू राजा के हुकुम से रहा हुआ ना, उसी तरीके से यहाँ भी एक वो एक चिंता, यहाँ असली में क्या देखता है, वहां कुसरू राजा, कुसरू का मतलब है सूर्य, कुसरू राजा एक चिंता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जैसा जैसा कुसरू राजा के हुकूमत के शुरुआत में वो हुकुम दिया, उसी तरीके से यहाँ 1878 कब आता है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य की शुरुआत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन हमने देखा है चोर के समान वो आएगा करके बोला, असली में चोर के समान आया अनदेखी और किसी को ना जाने, जैसे कब आया 1874 आया और इस दुनिया से शुरू किया चुपचाप, किसी को बताया नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे उनके चेलों को ये ज्ञान को हासिल किया, क्योंकि उनके वचन के जरिए से कौन पहला ये ज्ञान हासिल करेगा, उनके चेले, तो 1874 के बाद 1878 में, मतलब 3 साल के बाद इस इसराइल के ऊपर वो दंड का समय खत्म हो जाता है और के ऊपर वापस परमेश्वर का आशीष आ जाता है। तो हम देखते हैं 1878 क्योंकि कुसरू राजा प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है। ये वचन पढ़ेंगे यशाया 45वां अध्याय पहला वचन, यशाया 45:1। तो ये कौन है? ये सिर्फ कुसरू राजा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। कुसरू राजा एक चिन्ह बना इसलिए कि कुसरू का मतलब है सूर्य, और सचमुच प्रभु यीशु सूर्य है ना, इस दुनिया का रोशनी। तो इसलिए कुसरू राजा एक चिन्ह बना प्रभु यीशु मसीह के लिए, और जैसे जैसा प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य शुरू हुआ 1874 में, और जैसा जैसा 3 साल के बाद 1878 में इन लोगों का दंड का समय खत्म हुआ और इन लोगों का उस दंडित स्थिति से रहा हुआ और वापस अपने देश को इकट्ठा करने लगा, वही बात उस वक्त 606 के पहले जब वो लोग बाबुल में थे, वो सब एक चिन्ह बना इस बात के बारे में। तो जब वो लोग समझो, वो ट्रेलर है और ये मेन पिक्चर है, तो वो ट्रेलर में वो सब देखा उन लोगों को नहीं जानता था कि उनकी स्थिति और भी खराब होने वाला था बाद में, जब वो अपने मसीह को इनकार करेगा और उसके बाद उसके ऊपर बहुत लंबा दंड वाला था। उस वक्त उसको नहीं जानता था लेकिन प्रभु को जानता था, तो इसलिए प्रभु उस समय ये सारे बात एक चिन्ह के जरिए से दिया, और भविष्यवाणी भी हेजकेल को दिया, क्योंकि वो भविष्यवाणी उस वक्त तो सच नहीं होने वाला था जब वो लोग बाबुल में थे, बल्कि ये होने वाला था मसीह के बाद, समझ गया। तो ये बात ये दर्शन के बाद यहाँ हम देख रहे हैं, ये एक बहुत सुंदर का भविष्यवाणी है जो परमेश्वर इसराइल को दिया। ये इसराइल को इसलिए दिया क्योंकि जैसे जैसे इसराइल वो 70 साल जब वहां था ना, उनके मन बहुत दुख हुए और वो सोचने लगा, क्या हम सचमुच परमेश्वर के लोग हैं? क्या सचमुच परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष डाला है? क्या हम सचमुच इब्राहिम के बच्चे हैं? इतने सारे प्रतिज्ञा परमेश्वर इब्राहिम को दिया और इब्राहिम के बच्चे के लिए दिया, क्या वो सब सचमुच हमारे हमारे में से सच होने वाला है? बहुत सारे शक उनके दिल के अंदर आने लगा। लेकिन ये बात जब हुआ मसीह को इनकार करने के बाद, ये सचमुच सूखे स्थिति ही थे, क्योंकि ये लगभग 1850 साल के करीब करीब थे। ये समय के बारे में वचन में पढ़ेंगे एहेजकेल 37वां अध्याय 11वां वचन, एहेजकेल 37:11। हाँ, हमारा आशा जाती रही, हमारा कोई आशा नहीं है। तो जब कहते हैं कि हमारा आशा नहीं है, आशा का मतलब है विश्वास। विश्वास जाती रही किसके ऊपर? परमेश्वर के दिया हुए दिव्य प्रतिज्ञाओं के ऊपर, परमेश्वर का दिया हुआ, परमेश्वर के कसम जो इब्राहिम को दिया, जो बताया कि इब्राहिम के संतान, इब्राहिम के बच्चों, इसराइल देश एक बहुत ही बड़ा देश बन जाएगा, और इसराइल देश के द्वारा परमेश्वर सारा दुनिया को आशीष देंगे। इतने सारे इतना बड़ा प्रतिज्ञा हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये सारे प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास और आशा निकलने लगा। यही तो दिया गया है कि ये हड्डियां सूखे हुए थे। ये एक दर्शन याद में रख लीजिए, ये कोई असली बात नहीं है, ये सारा तो दर्शन है और सारा तो चिन्ह है। हड्डियां का मतलब है सारा इसराइल के घराने, और सूखे हुए स्थिति का मतलब ये है कि अपने विश्वास आशा के बगैर कैसे चला गया था, अपने विश्वास आशा का बिना का स्थिति में चला गया था। क्योंकि सारा का सारा सुसमाचार युग में इसराइल के छोड़े हुए स्थिति में, मतलब उजड़े हुए स्थिति में, इसराइल के लोगों के दिल में ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर बताता है वो बात उसी 37वां अध्याय एचकेल वचन 12 से लेकर 14 तक, वही एचकेल 37वां अध्याय वचन 12 से लेकर 14 तक।
इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, जब मैं यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोग, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनसे निकालूंगा।
कब्रें खोल कर का मतलब क्या है? तुम कब्र में नहीं है, तुम्हारा विश्वास कब्र में चला गया है, मतलब तुम्हारा विश्वास मर गया। वो आप लोगों को, हमारे को भी होता है कभी कभी, ये याद में रख लीजिए, हमारा हम भी विश्वास के दौड़ में हैं। क्या पता हमारे बीच में थोड़े लोग हैं जो जिसका विश्वास ही मर गया। तो जो विश्वास मर गया है, इसका मतलब विश्वास के लिए कोई जान नहीं है। तो यही परमेश्वर कहता है, ये कब्रों को मैं क्या करूंगा, मैं खोल दूंगा, और खोल के मैं तुम्हारे हुए विश्वास को जी उठाऊंगा। पढ़ लो, आगे पढ़ो, वही पढ़ो 12 और 13।
इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब ये मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं क्या बनूं। मैं तुमसे अपना आत्मा सुनाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे किसी देश में बताऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर ने यह कहा है कि, और किया भी है, पिता परमेश्वर की यही वाणी है।
तो ये परमेश्वर बताता है कि इन लोगों के विश्वास की स्थिति क्या है, मरे हुए स्थिति, कब्रों के अंदर गया। अभी इस मरे हुए विश्वास को जिलाना है, जिलाएंगे करके परमेश्वर बता रहा है। ये सब आप याद में रख लीजिए, ये सब जो है असली और सरल भाषा नहीं है, ये सब है चिन्ह की भाषा है। और चिन्ह की भाषा में परमेश्वर बता रहा है कि इसराइल देश के लिए जान कैसे वापस आएगा, मतलब वापस से एक देश बनना है ना, वापस एक देश बनना है, मतलब उजड़े हुए स्थिति में गया, अभी वापस एक देश बनना है, और साथ साथ में देश बनने के बाद अपने मसीह के ऊपर विश्वास और प्रतिज्ञाओं को जिंदा होना चाहिए। ये दो चीज है, इसराइल के जान वापस आना है, इसका मतलब है इसराइल वापस एक देश बनना है, क्योंकि उजड़े हुए स्थिति में थे ये लगभग 1850 साल। तो इस उस प्रकार से उनको जान वापस आना है, और देश वापस होने के बाद अपने दिल में परमेश्वर के दिए हुए मसीह के मसीह के ऊपर विश्वास और मसीह के ऊपर प्रतिज्ञाएं के ऊपर वापस उसको जाना है, वापस उनको उसको विश्वास और आशा आना है। तो ये बात तो परमेश्वर बता रहा है ये दर्शन में। तो अभी हम उस दर्शन के वचनों 7 से लेकर हम समझ जाएंगे कि ये का मतलब क्या है। 7 से लेकर 10 तक पढ़ लेंगे।
इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी करके रहा था कि एक आहट हुई और कोई डोर हुआ, वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नशे उत्पन्न हुई और मांस रहा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस को सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस हमेशा से जायु कहता है, चारों दिशाओं से आप घात किए हुए में समा जात की ये जीव थे। उसकी इस आगे के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीव ने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई।
कितना सुंदर तरीके से परमेश्वर चिन्ह के द्वारा बताता है तस्वीर के रूप में कि ये इसराइल देश दोबारा कैसा वापस एक देश हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, इसराइल दोबारा एक देश कैसा बन जाएगा। यहां परमेश्वर इनों के जरिए से बता रहा है हमारे को। अभी इसको समझने के लिए हम ये चिन्ह का मतलब हम पहचानना है। अगर हम ये चिन्हों को हम पहचानते हैं, हम जान लेंगे यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है और ये भी जान लेंगे कि क्या ये सारे बातों हो चुका है या होने वाला है। पहला हम सातवां वचन, अभी सिर्फ सातवां वचन पढ़ लेंगे।
इस आज्ञा के अनुसार मैं वाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई।
ये भविष्यवाणी करने लगा और पहला क्या हुआ, एक आहट हुई। एक आहट होने के बाद बेडौल ना, तो ये आहट होने के बाद बेडौल होता है और बेडौल के बाद एक एक हड्डी अपने हड्डी के साथ जुड़ते हैं। तो ये पहला बात परमेश्वर बता रहा है सेशन में। पहला एक आहट, आहट के बाद बेडौल, बेडौल के बाद हड्डियों एक एक दूसरे हड्डी के साथ जुड़ते हैं। ये मतलब क्या है? पहला एक आहट, आहट का मतलब है एक आवाज। ये आवाज, आवाज क्या है? ये आवाज एक चिन्ह है कि ये दर्शन की शुरुआत कौन से समय है। ये दर्शन जब शुरू हुआ, इसराइल का वापस इकट्ठा होने का समय, मतलब इसराइल के ऊपर अपने दंडित समय के खत्मी और इसराइल के ऊपर आशीष, वापस आशीष देने का शुरुआत, इसका शुरुआत का समय का के लिए चिन्ह बताता है एक आहट, एक आवाज। क्या है ये आहट और आवाज? ये था सातवां तुरी। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 15वां वचन, सातवां तुरी के बारे में। प्रकाशित वाक्य 11:15,
जब सातवें दूत ने तुरी फूंकी तो सब में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसकी का हो गया है, वह युगानुग की राज्य करेंगे।
आप कुछ जानते हैं कि सातवां तुरी शुरू हुआ 1874 में, वहाँ शुरू हुआ पांचवा कलीसिया जिसमें आप और हम अभी रहते हैं, अंत में लवदोकिया करके नाम के कलीसिया, लवदोकिया कलीसिया के अंत में हम रहते हुए हम जानते हैं कि ये सातवां तुरी का मतलब है सातवां दूत के द्वारा जो हम प्रकट हुआ सच्चाई, सातवां दूत के द्वारा जो प्रकट हुआ सच्चाई, ये है सातवां तुरी। तो ये सातवां तुरी में और ये सातवां दूत के जरिए से प्रकट हुआ सच्चाई में एक सच्चाई था इसराइल देश के बारे में, इसराइल कैसे वापस एक देश हो जाएगा, इसराइल कैसे वापस अपने स्थान में एक देश हो जाएगा। ये एक सच्चाई था सातवां सूरी के अंदर। तो सातवां सूरी का मतलब वो सच्चाइयों जो 1874 के बाद सातवां दूत के जरिए से प्रकट हुआ सच्चाई। समझ लिया आपने? ये सातवां सूरी, ये था आहट, क्योंकि ये आहट का मतलब है वहां से प्रकट हुआ, वहां से प्रकट हुआ वो बड़ा सच्चाई कि इज़राइल तुम्हारा समय अभी आ चुका है, या इज़राइल तुम्हारा दंडित समय खत्म हो गया है। ये सच्चाई प्रकट हुआ, ये सच्चाई प्रकट हुआ 1874 के बाद। और ये हम देखते हैं इस दर्शन में कि एक तरफ से शुरू होता है एक आहट, उसके बाद प्रकट होता बेडौल। बेडौल का मतलब हिलना, हिलना। इसका स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस में इस शब्द का नंबर है 7494 कॉन्कॉर्डेंस में। हिब्रू के भाषा में इस शब्द का नाम है राश, RASH, राश का मतलब है हिलना, शेकिंग। तो ये क्या है 1874 के बाद, मतलब 1878 में जब समय आया, जब सच्चाई प्रकट हुआ कि इसराइल के अच्छा समय आ चुका है, इसराइल के दंडित समय खत्म हो चुका है, उस वक्त प्रकट होता है बेडौल। बेडौल का मतलब है हिलने का मतलब क्या है कि इसराइल के लोग सारे दुनिया में तितर बितर परमेश्वर ने किया ना, उनको वापस इकट्ठा होने का समय का काम शुरू हुआ। वापस इकट्ठा होने का मतलब क्या है, अपने रहने के जगह में से उठा के वापस अपने अपने साथ इकट्ठा होते हुए परमेश्वर लाने का योजना शुरू किया। ये है बेडौल, हिलना का मतलब है। हम देख रहे हैं इसका तरीका कैसा परमेश्वर ये तरीका किया, कैसे इसराइल लोगों को अपने बसते हुए जगहों में से वापस इकट्ठा करने लगा, कैसे इकट्ठा करने लगा। यिर्मयाह में 16वां अध्याय वचन 15 और 16 में हम पढ़ना है। यिर्मयाह 16 15 और 16 यिर्मयाह 16वां अध्याय 15 और 16वां वचन
यह कहा जाएगा पिता परमेश्वर जो इज़राइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया और उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले
आया। मैं उनके निजी देश को वापस लौटा देंगे करके परमेश्वर कह रहा है। तो ये परमेश्वर के कसम के अनुसार परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं उन लोगों को जिन्होंने मैंने गुस्से में अपने देश से मैंने तितर बितर करा दिया, अभी मैं क्या करूंगा, उनको वापस लाऊंगा उसी अपने निज देश में। अभी समझ गया, वो पूरा तराई में थे सूखे हुए हड्डियां। अभी पहला क्या आ गया, एक आहट, आहट के बाद आया बेडौल, बेडौल हिलना, मतलब जहां जहां था वो हड्डी वहां से उठा के वापस अपने अपने जुड़ने में आना है, मतलब बिखरे हुए इसराइली लोग इकट्ठा करना अपने निजी देश में लाने के लिए। ये बात तो परमेश्वर यहाँ इन चिन्ह के भाषा में बता रहा है। तो अभी आगे पढ़ो क्या परमेश्वर बता रहा है।
देखो पिता परमेश्वर की ये वाणी है, मैं बहुत से मजदूर को बुलवा भेजूंगा, वे इन लोगों को पकड़ ले और वे बहुत
क्या क्या कहते हैं, क्या क्या भेज दूंगा, मछुआ मतलब मछली पकड़ने वाला, मछुआरे अभी, और
वे इन लोगों को पकड़ ले, फिर वे बहुत से भेजियों को बुलवा भेजूंगा।
क्या बोला, पहल या क्योंकि धीरे बोलना क्योंकि मैं समझना ये सारा शब्दों क्योंकि मैं तो नया नया पहला पहल समझ रहा हूँ। बहेलियों बहेलियों को बुला रहेंगे और तो एक पहला है मछुआरों को बेच के उनको पकड़ लेंगे और मछुआरों के बाद बहेलियों को बेच के उनको भगा देंगे। तो पहला तरीका है मछुआरों का तरीका जिनमें से पकड़ लेंगे और दूसरा तरीका है बहेलियों का तरीका जहां भगा देंगे। तो मछुआरों पकड़ लेंगे और बहेलियों भगा देंगे। आप समझ गया, एक तो खींचने का तरीका और दूसरा भगाने का तरीका। जब खींचने को नहीं आता भगाते हैं, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। तो परमेश्वर दो तरीका इस्तेमाल करेगा करके बोला इज़राइल को इकट्ठा करने के काम में। तो पहला काम और पहला तरीका ये है उसको मछुआरे को बेच देंगे, उनको पकड़ लेंगे। तो मछुआरे का मतलब क्या है, ये मछुआरे का तरीका शुरू हुआ 1878 में जहां जब एक ऐसा संगठन शुरू हुआ जिसका नाम था पिट्टा टिकवा संगठन। पिट्टा PETTAH TIKVAH पिट्टा टिकवा संगठन, इसका मतलब पिट्टा टिकवा मतलब हिब्रानियों के भाषा में पिट्टा टिकवा का मतलब है खुलते हुए या खुले हुए दरवाजा, क्योंकि उनका विश्वास के अनुसार लगभग 1800 साल तक के दर बंद था, परमेश्वर का दरवाजा बंद था। लेकिन 1878 में क्या विश्वास होने लगा कि इस सालों का बंद हुआ दरवाजा अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं, खुलते हुए दरवाजा, इसका मतलब है पिट्टा टिकवा, खुलते हुए दरवाजा पिट्टा टिकवा। तो ये खुलते हुए दरवाजा के नाम के एक संगठन शुरू हुआ और इस संगठन 1878 में शुरू हुआ। 1878 में स्विट्जरलैंड के देश में एक यहूदी जिसका नाम था थियोडोर हर्ट्ज़ल के नाम का एक यहूदी परमेश्वर इस्तेमाल किया इस संगठन को शुरू करने के लिए। और थियोडोर हर्ट्ज़ल के कोशिशों के जरिए से देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के से ये संगठन शुरू करते हुए धीरे धीरे बहुत सारे यहूदियों इकट्ठे होने लगा और इन बहुत सारे यहूदियों को थियोडोर हर्ट्ज़ल कहने लगा कि हमारा समय आ चुका है, अभी हम परमेश्वर के आशीर्वाद पाने वाला है और अगर अभी हम क्या करना है, हम परमेश्वर का दिया हुए प्रणाम के ऊपर हम विश्वास दिखाना है, विश्वास दिखा के हम अपने अपने बिखरे हुए जगहों में से हम वापस अपने निज देश को जाना है। तो जैसे जैसे मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए कुछ न कुछ क्या बोलते हैं उसको, कछुआ कुछ कीड़ा लगाता है, उस कीड़े में गिर जाए या कीड़े में फंस जाए, उसी तरीके से ये मछुआरे पकड़ने का तरीका का मतलब ये था कि इसराइल यहूदी लोगों को वापस अपने निज देश को आने के लिए उनको दिया गया था कीड़े के जैसे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन के अंदर प्रतिज्ञा, जैसा जैसा यशाया 7वां अध्याय 22वां, यशाया 60:22 नहीं है
क्या?
यशाया 60:22 यशाया 7वां अध्याय 22वां वचन
कितने पे है?
पुराण नियम में पिता परमेश्वर थे क्या? क्या दिया? मैं पिता परमेश्वर ऐसे दिया है, ऐसे चापा गया है, या मैं प्रभु
नाम
जी
जैसे हम
हिंदी में क्या दिया है उधर? नहीं उधर में क्या दिया, पिता परमेश्वर या दिया है प्रभु?
प्रभु ने नाम दिया।
ओ नाम ही दिया है? ओके 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 ओके
जैसे
पंजाबी ओके 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 क्योंकि अंग्रेजी लॉर्ड कैपिटल एल ओ आर डी है। ओके 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 समझा समझा समझा, क्योंकि मैं सोच रहा था क्या हिंदी में पिता परमेश्वर दिया गया है, यहोवा दिया गया है। ओके 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 समझ गया समझ गया। तो यहाँ देखो इस प्रतिज्ञा में परमेश्वर बताता है यहूदियों के लिए कि एक छोटे छोटे झुंड, छोटे छोटे लोग को परमेश्वर बल देंगे, बल देके वो बहुत शक्तिशाली है, अपने शत्रुओं से वो जीत जाएंगे, ये परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया। तो इस प्रतिज्ञा के अनुसार थियोडोसियस उन लोगों को कहने लगा कि देखो परमेश्वर वचन ये कहता है, चलो हम परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास डालेंगे और हम निज देश को वापस जाएंगे। अगर हम छोटे झुंड भी हो, अगर हम कम लोग भी हो, परवाह नहीं। देखो वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि हाँ परमेश्वर हमारे को आशीर्वाद करेगा। तो ये है मछुआरों के जरिए से उनको पकड़ने का कोशिश, उसको पकड़ने के लिए उसको कीड़े के लिए जो उनको खींचने के लिए क्या दिया था उस वक्त कहते थे, कह रहे थे कि जो लोग पहला आ जाता है निज देश के अंदर उसको काट दाम देंगे जमीन के लिए, बहुत कम दाम देंगे जमीन के लिए, उस बहुत स्पेशल उसको एक ऑफर भी देगा। और उसके बाद बोला कि उसको स्पेशल पोजीशन स्थिति रखेंगे क्योंकि वो आरंभ के वापस आने यहूदियों है। तो ऐसा उसको थोड़ा उसको कास्ट स्पेशल ऑफर दिया था ताकि वो विश्वास दिखा के अपने निज देश को वापस आए। लेकिन इस कोशिश में सारे लोग नहीं आया, जो लोग आए थे लेकिन सारे नहीं आए। तो और बहुत सारे यहूदियों अपने अपने देश में बैठे हुए थे, अभी उसको लाना है निज देश को। तो परमेश्वर ने समझा चलो इस मछुआरे के तरीका इनको काम नहीं हो रहा है, अभी उसको अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या बोला? बहेली। क्या
बहेलियों?
अभी बहेलियों को इस्तेमाल करेंगे। बहेलियों का मतलब क्या है? बहेलियों का मतलब है उसको भगाना। तो इन यहूदियों जो मछुआरे के तरीके में निज देश को नहीं आया, उन यहूदियों को बहेलियों के तरीके से वापस लाने का कोशिश अभी परमेश्वर करा। अभी ये बहेलियों का तरीका का मतलब क्या है? भगाना। तो इस तरीके में हम क्या देखते हैं कि जिस देश में ज्यादातर यहूदियों लोग, रूस में था, रूसी में और यूरोप में था, और इन लोगों को वहां से भगाने के लिए यूरोप में शुरू हुआ एक नफरत का संगठन, यहूदियों का विरुद्ध नफरत दिखाने का संगठन, एंटी जायोनिस्ट मूवमेंट, अंग्रेजी में एंटी जायोनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। ये एंटी जायोनिस्ट मूवमेंट से ही बढ़ते हुए हिटलर का नफरत प्रकट हुआ। हिटलर का नफरत से आप जानते हैं कि दूसरा दुनिया का युद्ध में 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया, 6 लाख यहूदियों को, सॉरी 6 नहीं 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। आपको जानता है ना, गैस चैम्बर्स में वगैरह वगैरह का तरीके से हिटलर ने ये काम किया। उसका इतना नफरत दिल में पैदा हुआ यहूदियों के ऊपर कि उन दिनों में ये पार्क, जानते हैं ना, बगीचे में बोर्ड लगा देते कुत्ते को इधर नहीं आना मना है, और उस बोर्ड में लिखता था कुत्तों और यहूदियों को यहाँ आना मना है, मतलब कुत्तों का सामान बना दिया। इतना नफरत यहूदियों के ऊपर दिखाने लगा। तो ये एंटी ज़ायनिस्ट का संगठन के कारण से अभी यहूदियों को डर होने लगा, और उस डर में वापस वापस अपने देश को वापस आने लगा। तो इसको पहलियों का तरीके से उनको बगाया, परमेश्वर बगाया जहां जहां वो थे। दूसरे दुनिया के युद्ध खत्म होने के बाद ढेर सारी यहूदियों बड़े 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 जहाजों में वापस इसराइल को वापस आ गया। ये सब आप इंटरनेट में आप देख सकते हैं, ये सब कैसा हुआ। और उसके साथ साथ दूसरा दुनिया के युद्ध के बाद इसराइल के लोग वापस एक स्वतंत्र देश शुरू हुआ 1948 में इसराइल दोबारा एक देश शुरू हुआ, प्रकट हुआ May 14, 1948। दूसरा दुनिया का युद्ध खत्म हुआ 1945, 3 साल के बाद 1945। तो उसी देश में, उसी जगह में जहां उनके बाप दादों थे, उसी जमीन पे वापस उन लोगों देश बना। यही वो दर्शन क्या बोला कि पहला आहट, आहट के बाद बेडौल, बेडौल के बाद वो एक एक हड्डी अपने अपने हड्डी के साथ आके जुड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या था कि पहला ये सच्चाई, इसराइल को वापस देश शुरू होने का सच्चाई प्रकट हुआ 7वां सूरी में, और उसके बाद बेडौल का मतलब परमेश्वर शुरू किया वो काम इन लोगों को इकट्ठा करने का, और इकट्ठा करने के साथ साथ वो दो तरीका परमेश्वर इस्तेमाल किया, मछुआरे का तरीका और दूसरा बहेलियों का तरीका इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ 1948 साल में और मई के महीने में और 14वां तारीख में इसराइल वापस से देश बना। तो ये सारा मतलब यहाँ इस एक ही वचन के अंदर में हम देख चुके हैं। देखो परमेश्वर इतने बड़ा बात ऐसे चिन्ह के भाषा में बता रहा है। उसके बाद अगले वचन पढ़ लो, 7 वचन एहेज्केल 37वां अध्याय 7वां वचन हमने समझ लिया, अभी 8वां वचन समझ लेंगे।
मैं देखता रहा कि उनमें नशे उत्पन्न हुई पर मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी।
हाँ, ये सब मतलब क्या है, ये सब इसराइल देश के बारे में है। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, ये बहुत ही बड़ा अचंभा हुआ। कोई भी देश इस दुनिया में उजाड़ होके, लोगों को तितर बितर होके लगभग 2000 साल दोबारा एक देश बनने का कोई भी उदाहरण नहीं, ये सिर्फ इसराइल है। इसराइल वापस एक देश शुरू हुआ एक लगभग 2000 साल के बाद, ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ देशों के बीच में। अभी ये इसराइल देश जब वापस एक देश बना 1948 उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वचन कहता है कि हड्डियों के ऊपर नस आ गया और नस के ऊपर मांस आ गया और मांस के ऊपर चमड़ी से दबने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देश के बारे में बताता है। एक देश का नस का मतलब क्या है? नस का मतलब क्या है? नस एक्चुअली का मतलब है ये हड्डी के ऊपर ये होता है ना, मसल कहता है इसको, नस कहता है ना, यो नस नर्व नहीं, नर्व नहीं है, ये है सिन्यू, मसल को क्या, मांसपेशियां। तो ये हिंदी में ये नस का अनुवाद बड़ा, यहाँ मांसपेशियां आना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं सिन्यू, सिन्यूज का मतलब है मसल। तो हड्डी के ऊपर पहला आया मांसपेशियां, क्योंकि अगर आप हड्डी को हिलना है मांसपेशियां चाहिए, अगर मांसपेशियां नहीं है तो हिल नहीं सकता हड्डी। तो उस तरीके से एक देश का मांसपेशियां का मतलब क्या है? मांसपेशियां का मतलब है तंदुरुस्ती, शक्ति। देश का शक्ति क्या है? दो बात है, एक है पैसा मतलब व्यापार और दूसरा है सुरक्षा। तो इसराइल जब 1948 में वापस एक देश हुआ, ये नया पैदा हुआ इसराइल अभी एक पूरा का पूरा देश बनने के लिए बहुत ढेर सारे पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए। एक देश दोबारा बनना है तो इतना सारा पैसा किधर से आएगा? परमेश्वर की कृपा से सारा सुसमाचार युग में जब इसराइल दंडित स्थिति में थे, यहूदी लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। आपने सुना होगा शेक्सपियर का एक प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम, वहां शाइलॉक द जू है, शाइलॉक नाम का एक पैसे वाला है। जैसे अंग्रेज इंडिया में भारत में पैसे वालों का नाम कौन है? मारवाड़ी। मारवाड़ी बोले तो इसका मतलब क्या है? वो लोग के पास ही पैसा है ना। उसी तरीके से लोग में दुनिया में सुसमाचार के युग में सबसे बड़े पैसे वाले कौन था? यहूदी। अभी भी अमेरिका का सबसे बड़े टाटा बिरला अंबानी कौन है मालूम? यहूदी। इसलिए अमेरिका इसराइल को कदर करते हैं, नहीं तो अमेरिका इसराइल को इतना कदर नहीं करेंगे। इसलिए कि अमेरिके के कितने अमीर लोग यहूदी लोग हैं, जैसा नाम है रॉकफेलर, बड़ा बड़ा रॉकफेलर, बहुत बड़ा रॉकफेलर सेंटर है न्यूयॉर्क में, बहुत बड़ा अमीर वाले हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग सबसे बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है दुनिया में, यहूदी है स्टीवन स्पीलबर्ग। ऐसे बहुत बड़े 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 लोग हॉलीवुड में और व्यापार में बड़े बड़े यहूदी हैं अमेरिका में। इसलिए हमें तो बहुत खास सुरक्षा इसराइल को देता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में उनके राष्ट्रपति बैठता है ना, उसके राष्ट्रपति को अगर कोई किसी को फोन करना है वो रिसेप्शनिस्ट के जरिए से जाएगा फोन राष्ट्रपति के पास। डायरेक्ट कोई किसी देश का मंत्री या प्रधानमंत्री डायरेक्ट से अमेरिका का राष्ट्रपति से बात नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक ही देश ऐसा कर सकता कि राष्ट्रपति के मेज के ऊपर एक फोन है जिसके ऊपर लिखा है इसराइल। इसराइल के मंत्री डायरेक्ट से रिसेप्शनिस्ट के जरिए से नहीं, डायरेक्ट से अमेरिका का राष्ट्रपति से बात कर सकता है। ये इसलिए है कि इसराइल के सबसे बड़े टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग वो सब यहूदी है और उन्होंने ये हुक्म डाला है कि हमारे देश को तुम खास सुरक्षा देना है। जब कभी हमारा देश का कोई नेता आपको फोन करे, आप तुरंत उनका फोन लेना है और उनकी सहायता करना है। तो ये इसराइल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये देश के ऊपर पहला क्या आया? मांसपेशियां। मांसपेशियां का मतलब है पैसा। तो जब डोनेशन देने लगा, डोनेशन जरूरत थे, तो धीरे धीरे 1948 से बहुत सारा पैसा आने लगा अंदर, बहुत सारा पैसा। तो इस पैसे से बनना था रोड, घरों, इमारतों और सारा सारा जो बनना है। तो धीरे धीरे पैसे आने लगा हम देखते हैं, और साथ में सुरक्षा, सुरक्षा बल, सेना, वायु सेना, जल सेना, सारा सेना को इकट्ठा करना है, तो शुरू करना है। इसराइल 1948 में एक देश हुआ और तुरंत युद्ध हो गया। तुरंत उसके आसपास सारे जो सहेली देशों उनके विरुद्ध युद्ध में आ गया। उनके विरुद्ध युद्ध में आके हम क्या देखा कि उस वक्त इसराइल के पास कोई सुरक्षा बल नहीं था, लेकिन धर्मेश्वर बहुत अद्भुत रीति से इनका उनका रिहा किया करके हम देखते हैं ये इतिहास में। तो पहला इनके ऊपर इन 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 हड्डियों पर पहला क्या आया, मांसपेशियां आया। मांसपेशियां का मतलब आपने अभी हम समझ लिया है, एक देश का बल। एक देश का बल होता है दो चीज, अंग्रेज में कहता है इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब पैसे के संबंधित सारे व्यापारिक बातें, और दूसरा है सुरक्षा, सुरक्षा बल। तो इसराइल में ये बात शुरू हो गया, ये बात इसराइल में बढ़ने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि मांस पेशियों के बाद क्या आ गया है, मांस। मांस का मतलब है शरीर, शरीर, बॉडी, शरीर। अभी शरीर, एक देश का शरीर क्या होता है, एक देश का शरीर होता है चार चीज। पहला सरकार, सरकार बनने के लिए सरकार के जरूरी बातें क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक पार्लियामेंट, एक इलेक्टोरल कमीशन, मतलब जैसे जैसे चुनाव को कैसा करना है, चुनाव का संगठन, एक पार्लियामेंट, और ये सारा जो जो इंतजाम। तो ये पहला हुआ। उसके बाद एक और तीन बात है, वो बाकी तीन बात क्या है, दूसरा बात क्या है, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, जहाँ से खाना आता है। तीसरा है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, उद्योग। दूसरा है उद्योग से बनता है चीजों जो बहुत जरूरी पड़ता है घर को बनाने के लिए और देश को बनाने के लिए। तो दूसरा आ गया उद्योग, और तीसरा आ गया सेवाओं। सेवा का मतलब है हर कोई सेवा, अस्पताल का सेवा, पोस्ट का सेवा, रेल का सेवा, बस का सेवा, हर कोई सेवा जो सरकार से बन जाता है, जो देश के लिए बहुत जरूरी होता है, वो बनने लगा। अभी देखो इसराइल में जब ये शुरू हुआ ये एक देने का काम, उसके पास जमीन ज्यादा नहीं था, तो खेती बाड़ी करने के लिए ज्यादा जमीन नहीं था, तो क्या करेंगे, इतने सारे लोग को खाना दिलाना है, जमीन तो बहुत कम है, तो कैसे जमीन का काम करना है, कैसे खेती बाड़ी करना है। उन लोगों के लिए एक उपाय आया, चलो हमारे जमीन ऐसा तो ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इमारतों बनाएंगे। तो इमारतों बनाने लगा, और इमारतों में अलग अलग मंजिल में, अलग अलग मंजिल में अपने अपने खेती बाड़ी करने लगा। जैसे जैसे हम खेती बाड़ी बनाते हैं घर को बसने के लिए, घर को रहने के लिए, वो लोग इमारतों बनने लगा खेती बाड़ी करने लगा। तो एक एक मंजिल में क्रॉप को क्या कहते हैं, अनाज, मतलब वो एक एक खेत में जैसे धान बीज डालते हैं ना, और बीज डालते बन जाता है ना एक क्रॉप, उसको क्या कहते हैं, फसल। तो अलग अलग फसल डालने लगा एक एक मंजिल में, और वो इंतजाम भी कैसा किया कि जैसे जैसे ऊपरी मंजिल में डालता है पानी और डालता है ये मैन्योर को क्या कहता है, हाँ, मतलब जो
क्या
मैन्योर जो डालता है ना, जो जमीन को डालता है अच्छा
खाद
खाद, तो जब जब खाद डाला और पानी डाला, ऊपर से नीचे आते हुए धीरे 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 आने लगा, तो कोई भी वेस्टेज भी नहीं हुआ। तो कितना कितना रोशनी आना है, कितना पानी डालना है, वो सब बहुत सही तरीके और सही मतलब क्वांटिटी
मात्रा
हाँ सही मात्रा में डालने लगा और 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 इससे बहुत फसल आया। तो ये बहुत फसल जो हम देखते हैं इसमें ये जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इसका नाम बन गया किबुत सिस्टम ऑफ फार्मिंग, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ज़मीन नहीं था तो इन लोगों को अपने खेती बाड़ी काम के लिए ऐसा तरीके इस्तेमाल किया। और ये तरीका बहुत ही आश्चर्य का तरीका था बाहरी लोगों के लिए, बाकी सारे देशों के लिए। और इस तरीके से इसराइल में खेती बाड़ी का काम शुरू हुआ। तो ये था एक बात जो देखते हैं ये मास्क के बातों में एक तो सरकार, दूसरा तो खेती बाड़ी, तीसरा तो उद्योग और चौथा तो सेवाओं। तो धीरे धीरे इसराइल देश के अंदर ये सारे का उत्पन्न शुरू हुआ। और ऐसे ही मांस हड्डियों के ऊपर आया। और उसके बाद क्या हम पढ़ते हैं कि मांस के बाद क्या आया, चमड़ी ढकने के लिए उत्पन्न हुआ। चमड़ी का मतलब क्या है, चमड़ी का मतलब है बंद करना, पूरा करना। तो ये देश को पूरा करने का मतलब क्या है, एक देश को, एक नया देश को कभी हम उसको पूरा हो गया कब कहते हैं, जब बाकी सारे देशों को उनको कबूल करते हैं। जैसे दुनिया के देशों को एक रिकॉग्निशन देता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ एक प्रतिनिधि बनना है, वहाँ का एक हिस्सा मिलना है। तो ये इसराइल देश बहुत साल लगा यूएनओ में एक जगह मिलने के लिए। अभी इसराइल देश बाकी सारे देशों के बीच में एक पूरा देश बन गया है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, मतलब एक देश अपने लिए एक एम्बेसी रखता है और इसराइल के लिए दूसरे देशों में अपने एम्बेसी रखता है। तो इस तरीके से एक देश दूसरे देश के साथ संबंध रखते हैं, इस तरीके से एक देश दूसरे देश कबूल करते हैं कि तुम एक पूरा देश है, हम तुमको कबूल करते हैं। तो इसराइल को भी ऐसा कबूल होने का स्थिति हुआ। ये हुआ एक 10-15 साल पहले इसराइल को ये रिकॉग्निशन मिला। रिकॉग्निशन मिलने के बाद इसराइल को एक पूरा देश बन गया। लेकिन पूरा देश के बाद भी इसराइल में हम देखता है सांस तो नहीं है, वचन पढ़ लेंगे।
मैं
देखता रहा कि उनमें नशुस्पन्न थी और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उनमें सांस नहीं था। तो सांस तो नहीं था, तो इसराइल देश के वापस देश बनने में वचन में पड़ा कि पहला नस्ल नहीं, वहां तो मांसपेशियां आना चाहिए। मांसपेशियों के ऊपर मांस आया, मांस के ऊपर चमड़ी आया। इसका मतलब एक देश बनने के लिए धीरे 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 इसराइल के अंदर पहला बल की बात, मतलब पैसे या व्यापारिक संबंधित बातों, उसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा के बल, सुरक्षा के बल मतलब सेना और वायु सेना और जल का सेना का इंतजाम। उसके बाद आया था मास, मास का मतलब हम देखा है एक देश को बनने के लिए देश की सरकार, और उसके बाद खेती बाड़ी, और उसके बाद उद्योग, और उद्योग के बाद सेवाओं। ये सब इसराइल के अंदर इतने सारे सालों से ये बन के आ रहा है। अभी एक ही बाकी है, वो है सात। अभी ये सात के बारे में परमेश्वर कहता है नवा वचन में,
सो
इन गाद किए हुए नाम दिया है इसराइल के इकट्ठे किए हुए स्थिति, इकट्ठे किया हुए इसराइल के इकट्ठे किया हुए स्थिति के लिए नाम क्या दिया है, गाद किए हुए। गाद किए हुए, गाद किए हुए का मतलब क्या है कि सारा दुनिया गाद किए हुए स्थिति में है। सारा दुनिया में अभी जान तो नहीं है। लूका 9:7 पढ़ लेंगे। लूका 9:7। लूक का 9:7
उसने उनसे कहा, मरे लोग अपने मूर्ति गाड़ने थे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की,
परमेश्वर सॉरी प्रभु यीशु मसीह कहा, मरे हुए ने अपने मुर्दों को गाड़ने दे। तो मरे हुए का मतलब क्या है, सारा दुनिया, सारा दुनिया के ऊपर अभी मौत का दंड है, पाप का दंड है मौत। सारा दुनिया मौत का दंड है, मौत में पैदा होता है हमारे बच्चे, हम सब मौत में ही पैदा हुआ। तो ये मौत का स्थिति इसराइल में भी है, इसराइल भी मौत के स्थिति में है। और माउथ का मतलब यह है कि कोई जान नहीं है, और जब जान नहीं रहता है आंख में भी जान नहीं है, और जब आंख में जान नहीं रहता तो अंधा रहता है। तो जैसे जैसे सारा दुनिया में माउथ है, सारा दुनिया के आंख में जान नहीं है, उसी तरीके से इसराइल में भी उनके आंखों में भी जान नहीं है, वो भी अंधा है। ये वचन, ये बात तो हम पढ़ लेंगे, ये यहाँ तो पढ़ लिया है। और जान का मतलब है परमेश्वर के पवित्र आत्मा, और जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं हम जान में आ जाता है। और ये बात तो हम पढ़ते हैं एफेसियों 4:18
उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और कुज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं।
परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन है परमेश्वर के पवित्र आत्मा। सो इस मरे हुए स्थिति, गाद की हुई स्थिति इसराइल के बारे में भी बोल दिया गया है, गाद किए हुए स्थिति। अभी इस गाद किए हुए स्थिति को जान में लाने के लिए चाहिए है ये सांस चाहिए। और ये सांस चाहिए हम कहते हुए, सांस का मतलब क्या है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा। अभी परमेश्वर की पवित्र आत्मा अभी हमारे को जान दिया गया है, हम मरे हुए स्थिति में पैदा हुआ, लेकिन बुलावा को मिलने के बाद परमेश्वर उनकी पवित्र आत्मा को हमारे को दे दिया है और हमारे को जान में वापस लाया। तो हमारे ये स्थिति के बारे में हम रोमियो में पढ़ते हैं, रोमियो आत्मा अध्याय 10 और 11, रोमियो आत्मा अध्याय 10 और 11।
यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के लिए है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा।
देखो, अपने आत्मा के द्वारा हमारे मरे हुए देहों, तो बहुत साफ तरीके से मालूम होता है कि पवित्र आत्मा से ही जान आता है वापस। लेकिन यहाँ तो बहुत साफ तरीके से ये बात समझ लिया है कि ये सांस जो जान देगा परमेश्वर की पवित्र आत्मा, तो इसराइल को भी परमेश्वर से ये जान मिलना है, मतलब इसराइल को परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मिलना है। तो कब इसराइल परमेश्वर को पवित्र आत्मा को पाएगा और कैसे पाएगा, ये सवाल का जवाब हम पढ़ते हैं 10वां वचन, एहेज्केल 37:10। तो ये सांस किधर से आया, ये सांस किधर से आया, हम वचन में हमने पढ़ा है ये 9वां अध्याय, ये 4 दिशा से, 4 दिशाओं का हवा से आएगा ना। तो 4 दिशाओं का हवा का मतलब क्या है? ये 4 दिशाओं का हवा का मतलब को समझने के लिए हम एक और वचन पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 11वां वचन, प्रकाशित वाक्य 7:11-7:1, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 1वां वचन।
मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 सरूप खड़े देखे, वे पृथ्वी के चारों हवाओं पर थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न
हो। देखो तो ये 4 हवाओं पृथ्वी के 4 कोनों से कैसे बहाते हैं। अभी आप देख लो, अगर हवा 4 कोने से बहते हैं, तो ये एक दिशा और एक दिशा, 4 दिशा से अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से अगर हवा बहते हैं, तो 4 जोर से आएगा और बीच में मिलके एक तूफान बन जाएगा, एक वर्लविन बन जाएगा। ये तूफान क्या के पास क्या होता है? बहुत शक्ति होता है। तूफान के रास्ते में जो होता है वो सब उजाड़ हो जाता है। तो ये 4 हवा जहां से इसराइल को अपने साथ मिलेंगे, इसका मतलब है एक तूफान। ये तूफान का मतलब क्या है कि दुनिया में आने वाला है बहुत ही बड़ा कलेश, बहुत बड़ा कलेश, द ग्रेट टाइम ऑफ ट्रबल। क्योंकि ये 4 दिशा का मतलब 4 संगठन, अभी दुनिया में 4 संगठन से खड़े हुए हैं, एक तो सरकारिक संगठन, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन और चौथा है ये धार्मिक संगठन। ये 4 संगठनों से दुनिया अभी खड़े हुए हैं, लेकिन इन चार संगठनों में जब उलझन पैदा हो जाता है, उलझन मतलब ये है हवा, तो ये चार संगठन से प्रकट होते हुए उलझन दुनिया में बन जाएगा एक कलेश, तूफान। क्योंकि समझो कि धार्मिक कोई बात और कोई मुश्किल चल रहा है, कह सकता है जब तक हमारे पास पैसा है, कह सकता है जब हमारे समाज में कुछ शांति है, लेकिन जब समाज से उलझन, व्यापारिक संगठनों से उलझन, धार्मिक संगठनों से उलझन और सरकारी संगठनों से भी उलझन, जब चारों से उलझन प्रकट हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ा कलेश है जो सह भी नहीं सकता। इस बहुत ही बड़ा कलेश जो आने वाला है, जो वचन में दिया गया है, वचन में पढ़ते हैं दानियल दूसरा अध्याय 45 वचन, दानियल 2:35 दानियल 2:35
सब लोहा मिट्टी पीतल चांदी सोना ये सब चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के घंटे के समान हवा से ऐसे हो गए उनका भी पता न आया था और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पीछे में फैल गया।
देखो तो ये वचन बताता है कि ये कैसा ये कलेश का समय आने वाला है। ये कलेश यहाँ दिया गया है, ये एक हवा, ये हवा आएगा और इस टूटे हुए टुकड़ों को लेके जाएगा। टूटे हुए टुकड़ों को लेके जाने के बाद वो पत्थर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो ये कलेश का समय आएंगे और वो कलेश का समय है ये चार हवा। चार हवा मिलने से, चार हवा टकराने से, ये चार हवा टकराने से बन जाएगा तूफान और इस तूफान से ही इसराइल को पवित्र आत्मा पाएगा। इसराइल को ये पवित्र आत्मा इस तूफान के समय में कैसा प्राप्त करेगा, वचन में हम पढ़ते हैं ये तूफान इसराइल के बीच में कैसे आएगा। यिर्मयाह 30वां अध्याय वचन 3 से लेकर 7 तक, यिर्मयाह 30:3 से लेकर 7 तक, देखो ये बात हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ये होने के बाद क्या हो जाएगा, पढ़ लो।
जो वचन पिता परमेश्वर ने इज़राइलियों और यहूदी के विषय कहे थे वे ये है, पिता परमेश्वर कहता है सदा सदा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं वही का है, पूछो तो भला तो देखो क्या पुरुष को भी तेरी जन्म का पीड़ा सुखी है, उसका कारण है कि सब पुरुष जिसका के समान अपने अपने कमर अपने हाथ से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं, तुम सबके पीले पड़ गए हैं, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं, वह याकूब के संकट का समय होगा, संतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा।
याकूब का संकट का समय, याकूब का संकट का समय, लेकिन परमेश्वर कहता है उससे मैं उनको छुड़ाऊंगा। ये याकूब के संकट का समय और भी जानकारी हम पढ़ते हैं एहेजकेल के 38वां अध्याय वचन 7 से लेकर 9 तक, एहेजकेल 38 7 से लेकर 9 तक।
इसलिए तू तैयार हो जा और तू जो जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी छुट्टी मिल जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छुटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इसराइल के पहाड़ों पर जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, बल्कि वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा और अपने सारे दलों और दूसरे देशों के लोगों समेत नेम के समान देश रखा जाएगा।
देखो तो इसराइल के ऊपर आक्रमण करेंगे बहुत सारे देशों जो उत्तर के दिशा से, उत्तर का दिशा का मतलब है इसराइल से उत्तर है, उत्तर के दिशा रूस है और यूरोप के देशों हैं। वचन में एक और वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं सारे देशों इसराइल के विरोध में लाऊं। जकरिया 14 अध्याय 2 वचन, जकरिया 14:2,
क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे। परंतु प्रजा के
सिर्फ दूसरा वचन कहता है कि मैंने सारे देशों को इसराइल के विरोध में लाऊंगा। सारे देशों को विरोध में लाने का कैसा, अभी सारे देश अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा दुनिया है। ऑस्ट्रेलिया किधर है, साउथ अमेरिका किधर है, अमेरिका किधर है, इसराइल किधर है। तो सारे देशों को इसराइल के विरोध लाना का मतलब क्या है, इतने साल तो हम नहीं समझ गया ये बात क्या है। अभी हम सब अभी परमेश्वर बताता है कि ये इसका मतलब है एक यूएनओ, अभी एक यूएनओ है, बहुत ही बड़ा दुनिया का पार्लियामेंट है, एक एक देश का एक एक प्रतिनिधि वहां जाता है, एक एक प्रतिनिधि वहां बैठ के अपने देश का विचार बताता है और सारा देशों कुल मिला के बैठ के एक निर्णय लेता है। तो इस तरीके से सारे देशों, दुनिया के सारे देशों एक फैसला लेता है, एक निर्णय लेता है। इस तरीके से सारे देशों इसराइल के विरोध में आए, कैसे एक यूएन एक पॉलिसी लेंगे, यूएन से एक बात प्रकट हो जाएगा कि इसराइल ने ये बात बुरा किया तो इसराइल के विरुद्ध में हम ये बात बताते हैं। तो इस तरीके से सारे दुनिया के देशों इसराइल के विरुद्ध में आएंगे, इसका मतलब क्या है, एक यूएन अनाउंसमेंट से ये हो जाएगा, हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर वचन में पढ़ता है इसराइल को बहुत ही अद्भुत रूप से भेजा, क्योंकि समझ लो सारा दुनिया इसराइल के विरुद्ध आया कि इसका मतलब कितने शक्तिशाली दुश्मन। लेकिन इसराइल परमेश्वर ही छुड़ाएगा करके वचन में पढ़ते हैं जकरिया 12:8-9, जकरिया 12:8-9।
समय किताब में से यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बजा देगा और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना उनमें से घराना होगा। अर्थात किताब में से उस फिलिप दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम में लड़ाई करेंगे।
तो देखो परमेश्वर लड़ाई करेंगे इसराइल के लिए, परमेश्वर अगर इसराइल के लड़ाई करेंगे तो इसराइल को बहुत बड़ा जीत होने वाला है, बहुत बड़ा जीत ही होएगा इसराइल को। लेकिन वो युद्ध जो अभी अंत में होएगा, ये इसका युद्ध का नाम बाद के समय इसके युद्ध का नाम हो जाएगा तीसरा दुनिया का युद्ध। और ये तीसरा दुनिया के युद्ध के बारे में वचन कहता है कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब का युद्ध है, अनु बम अनुबम परमाणु परमाणु बम का युद्ध होगा। ये परमाणु बम का युद्ध के बारे में वचन में पढ़ेंगे जकरिया 14:12। देखो ये परमाणु बम का परमाणु बम का इफेक्ट को क्या कहते हैं,
प्रभाव।
ये परमाणु बम का प्रभाव है। जब परमाणु बम का विस्फोट हो जाता है ना, उससे निकल जाता है रेडिएशन, और वो रेडिएशन जो है क्या है, ये हमारा ये जो ऊर्जा जो है ना, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उससे भी हजार लाखों गुना ज्यादा। गर्मी बहुत ज्यादा है और जल जाएगा शरीर। आपको जानता है जब जलने का कोई एहसास आ जाता है, मैसेज चले जाता है दिमाग को, और हमारा आंख को खोलते हैं और हमारा जीभ से हम चिल्लाते हैं, क्योंकि वो दर्द इतना होता है। लेकिन ये वचन कहता है कि वो स्प्लिट सेकेंड में जब वो मैसेज चले जा कि हम जल रहा है और दर्द महसूस हो रहा है, उसी क्षण में मौत आ जाता है। मतलब कायक मौत, ये है परमाणु बम में ही हो सकता है। ये परमाणु बम के बारे में वचन में हम पढ़ते हैं यहाँ। तो परमेश्वर इस बहुत ही भयानक युद्ध में से इज़राइल को छुड़वाएगा। इज़राइल में एक भी बम गिरेगा नहीं। सारे जो बम जो इज़राइल के ऊपर डालेगा, वो इज़राइल के ऊपर नहीं गिरेगा, वो जाके कोई दूसरे जगहों में गिरेगा। और इस तरीके से इस युद्ध के परिस्थिति में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा इज़राइल के ऊपर उंडेल करेंगे। एहेजकेल 39:29। एहेजकेल 39:29। देखो तो ये बात साफ तरीके से बताता है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के ऊपर पहला उंडेल करेंगे और इज़राइल के जरिए से सारा दुनिया के ऊपर वो पवित्र आत्मा जाएगा। क्योंकि हमको जानता है कि ये परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के राज्य के सारे आशीषों शुरू हो जाएगा पहला इज़राइल में, क्योंकि इज़राइल में ही परमेश्वर का राज्य पहला स्थापित हो जाएगा। इस तरीके से इस दर्शन, इस सूखे हुए हड्डियों का दर्शन, मतलब ये वो तराई में वो सूखे हुए हड्डियों का दर्शन खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा सच्चाई को पहुंच जाएगा। इज़राइल इस तरीके से जी उठेंगे, वचन कहता जी उठेंगे, जी उठ के एक बहुत बड़ा सेना हो जाएगा। सेना का मतलब क्या है, परमेश्वर के राज्य का सेना है, क्योंकि परमेश्वर इसी इज़राइल को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का सच्चाई और परमेश्वर के उद्धार के समाचार सारा दुनिया को देने के लिए। ये वचन हम पढ़ता है जकरिया 8:23। जकरिया 8:23। जकरिया 8:23।
सेनाओं का पिता मनुष्य यूं कहता है, कुछ दिनों में फारसी भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य की गिनती पुरुष की ओर से किस ओर को एक कहकर पढ़ लेंगे, हम तुरंत करेंगे क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है।
देखो तो ऐसे इस वचन से हम मालूम हो गया कि सारा का सारा दुनिया वाले किस्म किस्म के बादशाह किस्म किस्म के जातियों किसके पास जाना है परमेश्वर के राज्य के आशीष पाने के लिए? यहूदी के पास, इज़राइल के पास, यहूदी से सीखना है। तो इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा किसके ऊपर उंडेलेगा? पहला इज़राइल के ऊपर, यहूदी। यहूदी के से ये राज्य के आशीर्वाद सारा दुनिया को जाएंगे, सारा दुनिया को ये खबर मिलेगा कि परमेश्वर इज़राइल में है, इसलिए इज़राइल में जाएंगे। यशाया दूसरा अध्याय दूसरा और तीसरा वचन, यशाया दूसरा अध्याय दूसरा और तीसरा वचन, बहुत साफ तरीके से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य जब स्थापित हो जाएगा, परमेश्वर के इंतजाम ये है कि ये राज्य के आशीर्वाद सिर्फ इज़राइल से प्रकट होना चाहिए। सारा दुनिया के देशों, सारे दुनिया वाले इज़राइल को ढूंढ के आना है, इज़राइल को ढूंढ के आना है। कितना बड़ा महिमा इज़राइल के लिए इंतजार कर रहे हैं। सारा दुनिया वाले इज़राइल के पास जाना है, सारे इज़राइल सारे दुनिया वाले को जान जाएगा कि परमेश्वर, दुनिया का परमेश्वर इज़राइल के पास है। वचन में पढ़ लेंगे आखिरी वचन, यशाया सातवां अध्याय दूसरा वचन, यशाया 7:2, 60 मतलब 60 और वचन 2,
एक पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर गोबर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर पिता परमेश्वर उदय होगा और उसका तेज प्रकट होगा।
देखो देखा, तो इज़राइल के ऊपर ही परमेश्वर प्रकट हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा, परमेश्वर के राज्य स्थापित हो जाएगा। तो पहला इज़राइल में परमेश्वर के राज्य स्थापित होके सारे बाकी दुनिया के देशों वाले ये बात को पहचानना है कि अभी दुनिया में परमेश्वर इज़राइल में है। तो अगर परमेश्वर से मिलना है, अगर परमेश्वर के आशीर्वाद को पाना है, इज़राइल के पास जाना है, तो सारे दुनिया वाले इज़राइल के पास जाएंगे। इसलिए ये हड्डियां, सूखे हुए हड्डियां, चलते 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 एक बहुत बड़ा सेना बन जाता है, सेना बन के कड़े हो जाते हैं, किसके? परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर के राज्य में। देखो कितना सुंदर सा एक दर्शन, एक भविष्यवाणी आज हमने देखा है। ये पुराना नियम में ये पूरा का पूरा इज़राइल के लिए है। तो इज़राइल के लिए, इज़राइल देश के लिए हम देखा है परमेश्वर के वचन में कितना सुंदर सा एक योजना और एक महिमा उनके लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर ही उनके पवित्र वचन को आशीर्वाद करके आप सबको परमेश्वर के नाम में आशीर्वाद हो। आमीन। अभी आखिरी एक प्रार्थना करेंगे, मोनो भाई प्रार्थना करेंगे।
आपकी समझ में बनी है, आपका कोई साथ मिलता है भाई की मिलता है। आमीन आमीन।